कर्म करता है तो जिसको जो ना जो भी व्यापार मिलता है तो करना शुरू कर देता है नहीं? इस समय कलयुग में वो व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त है कि हर व्यक्ति को जो ना रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है और इनकी आवश्यकताओं को जुटाने के लिए दिन रात काम करता है। तब तो फिर कौन जानता है कि किसका ब्राह्मण वर्ण है, किसका क्षत्रिय वर्ण है, किसका वैश्य वर्ण है, किसका शूद्र वर्ण है, कोई नहीं जानता है ना। लेकिन भगवान जो है ये चार प्रकार के जो वर्ण है उनके चार प्रकार के जो कर्म है वो बतला रहे हैं जानने के लिए कि हमको पता होना चाहिए ये है। और अगर अपने जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए कि हम अपने को सुरक्षित महसूस करें तो अपने इन कर्मों के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करें कि मैं ब्राह्मण हूं या मैं क्षत्रिय हूं या मैं वैश्य हूं या शूद्र हूं, है ना। तो वैश्य के बारे में भगवान कहते हैं तीन प्रकार के कर्म स्वाभाविक हैं, एक तो खेती करना, दूसरा गोरक्षा करना और तीसरा व्यापार करना। तो वैश्य के अंदर ये बुद्धि होती है कि वो गौओं की रक्षा कर सके, शूद्र में नहीं है ना। जो वैश्य है वो गौओं की रक्षा कर सकता है क्योंकि उसके पास इतना दिमाग रहता है, शूद्र से ज्यादा दिमाग रहता है कि गौओं की क्या आवश्यकता है और किस समय जो ना गाय को खली देना है, किस समय पानी देना है, किस समय भूसा देना है, किस समय घास देना है, है ना। तो वैश्य का ये स्वाभाविक कर्म है। शूद्र जो है नहीं सोच पाता है कि इस समय पानी देना है और इस समय घास देना है कि नहीं, एक काम करता है एक काम नहीं करता है कि नहीं। इस प्रकार से जो है वैश्य के लिए बताया गया है कि गोरक्षा और वाणिज्य भी व्यापार भी वैसे ही जो ना इन कार्यों में रुचि ले सकता है कि मुझे कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, है ना। शूद्र नहीं रुचि ले सकता है इन चीजों में। शूद्र को तो बस जो आदेश दिया जाए वो अपना करता रहेगा, बस यही कर सकता है शूद्र। तो वैश्य में जो है ना ये योग्यता होती है कृषि गोरक्ष वाणिज्य व्यापार, क्योंकि व्यापार में बहुत सी जो है गहराइयां होती हैं कि किस चीज का व्यापार कर रहे हैं, है ना, और कब खरीदना है कब बेचना है किस समय रखना है और किससे किस प्रकार से बात करनी है अपना काम निकालना है, है ना। तो सब जो कार्य हैं ये शूद्र नहीं कर सकता है। व्यापार शूद्र केवल सेवा कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते भी हैं सामान्य जीवन में बहुत से लोग हैं जो शूद्र के स्वभाव के हैं, तो वे जो है सोचते नहीं कि मैं जो है ना और कोई बिजनेस करूं या कुछ और जो है ना धन अर्जन करने के उपाय बनाऊं, वो नहीं सोच सकता है। वो जो है ना अगर किसी व्यापार में काम करता भी है तो वो अपना एक दिशा में काम करता जाता है जैसा उसको कहा जाए बस, है ना। तो ये शूद्र है। और जो वैश्य है तो उसके अंदर ये प्रवृत्ति है, व्यापार करने की प्रवृत्ति है, गोरक्षा करने की प्रवृत्ति है और खेती करने की प्रवृत्ति है। अच्छा, फिर क्षत्रिय मतलब हम उल्टे से चल रहे हैं कि पहले शूद्र के गुणों की चर्चा की फिर वैश्य की, अब क्षत्रिय के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। क्षत्रिय में क्या है, शौर्यम तेजो धृतराक्षम। तो शौर्य का मतलब है वीरता और तेज का मतलब है शक्ति प्रभाव। तो क्षत्रिय गुण है वीरता और शक्ति और प्रभाव। और दाक्षम दक्षता, कोई भी कार्य है क्षत्रिय अगर जो है ना करता है उसको तो ज्यादा ही दक्षता के साथ करता है, बड़ी सावधानी के साथ करता है। तो स्वयं तेजो धृतिर्दाक्षम और युद्ध चाप पलायनम, युद्ध में ना भागने का जो स्वभाव है ये क्षत्रिय के अंदर होता है। तो ये जो है क्षत्रिय गुण है। और दानम ईश्वर भावश्च है, दान देना है, ये क्षत्रिय गुण है। वो मना नहीं करता है, दान से मना नहीं करता। अगर कोई दान मांगता है तो क्षत्रिय जो ना उससे मना नहीं करता है। दानम ईश्वर भावश्च, ईश्वर भाव में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हाँ नेतृत्व, नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व। ईश्वर का मतलब है जो रास्ता दिखलाए या जो है मार्गदर्शन करे किसी विशेष संप्रदाय का, या मतलब किसी विशेष ग्रुप का। अगर वो मार्गदर्शन करता है तो वो नेता कहलाता है, है ना। नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब, नेतृत्व भी बना कहां से, नेत्र से बना है। नेत्र जैसे आपको रास्ता दिखलाते हैं, है ना। तो नेतृत्व जो करता है इसका मतलब है कि नेत्र देता है आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, है ना। तो क्षत्रिय के अंदर जो है ना ये गुण होते हैं, नेतृत्व करने लगते हैं। कहीं पर अगर कोई परेशानी होती है और कुछ जो है ना लोग परेशानी हो जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, तो क्षत्रिय जो है ना उनका नेतृत्व करने लगता है। अगर कोई क्षत्रिय स्वभाव का कोई व्यक्ति है तो वो जो है ना उनके बीच में आकर के और उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है, बताता है कि ये करना ये नहीं करना है। कई लोग हैं वो भूल जाते हैं जो है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्षत्रिय जो है ना इन चीजों में बहुत निपुण है, दाक्षिण्य भी। तो ये सब कर्म वो जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। युद्ध चाप्य पलायन, युद्ध में ना भागने का स्वभाव। तो ये जो है ना क्षत्रिय का स्वाभाविक गुण है। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये गुण है युद्ध में ना भागने का, है ना। तो ये कर्म तुम मेरी प्रसन्नता के लिए करो, है ना। ये मत सोचो युद्ध में तुम जीत जाओगे तो तुमको ये फायदा होगा वो फायदा होगा, तुमको बड़ा ऊंचा पद मिल जाएगा, बहुत धन संपत्ति मिल जाएगी, ये मत सोचो। युद्ध में जो है तुमको ललकारा जा रहा है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम युद्ध करो, है ना। किस तरह से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए तुम्हें युद्ध करना है, है? और ब्राह्मण के जो स्वाभाविक कर्म है तो इसमें भगवान क्या बताते हैं, समो। तो सबसे पहला क्या है ब्राह्मण का गुण, शांति प्रियता, है ना। तो उसको ज्यादा पसंद है ब्राह्मण को, है? कि कोई भी कार्य हो बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से हो और किसी प्रकार की अशांति ना हो, है? तो ब्राह्मण का ये गुण है शांति प्रियता। सम का मतलब एक प्रकार से मन का समन भी है। ब्राह्मण के अंदर जो है ना ये विशेष होती है कि वो अपने मन का शमन करता है। मन का शमन इसका मतलब है कि मन में कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं तो उनको जो है वो कंट्रोल करता है, बस में करता है। ये नहीं है कि मन में जो भी इच्छा हो तो वैसे काम करना शुरू कर दिए। शम का मतलब ये है वो मनमौजी नहीं होता है कि अपने मन की मौज से ही हर काम करता है, समो। और फिर दमह, दमह का अर्थ है आत्म संयम, या दम का मतलब है इंद्रियों का दमन, समा का मतलब मन का समन और दमह का मतलब इंद्रियों का दमन। तो ये ब्राह्मण के अंदर ये स्वाभाविक योग्यता होती है कि अपनी इंद्रियों का दमन करता है, मन में इच्छाएं होती हैं उनको भी बस में करता है और इंद्रियों के भी जो है इंद्रियों में जो इच्छाएं हैं राग द्वेष है तो उनसे वो मुक्त होता है, संघर्ष करता है, समोदमस। इसके बाद क्या है तपह, तो तपह का मतलब क्या है तपस्या। तो ब्राह्मण के अंदर ही तपस्या का भी गुण होता है। तपस्या शरीर मन और वाणी तीनों की होती है कि नहीं। तो सम में तो मन की तपस्या आ जाती है, सम जो मन का निग्रह करता है कोई व्यक्ति, मन की तपस्या आ जाती है। और दम इंद्रियों तो इंद्रियों में जरा वाणी भी एक इंद्रिय है ना, तो वाणी का जो कंट्रोल करना वो भी आ जाता है। तो फिर यहाँ तपा जो अलग से शब्द है तपा, इसको आप कह सकते हैं शरीर की तपस्या। तो ब्राह्मण के अंदर जो है ये गुण रहता है कि वो जो है कभी अगर तपस्या का अवसर होता है तो जरूर पीछे नहीं हटता तपस्या करने के लिए। शरीर में जो असुविधाएं होती हैं उनको स्वीकार करता है। तो ये सब जो गुण है, मतलब भगवान ये कह रहे हैं स्वेच्छ कर्म निवृत्त, अपने अपने कर्मों में अभिरत। कोई ये नहीं है कि भाई ब्राह्मण है तो उसका बहुत अच्छा कर्म होगा और शूद्र है उसका तो कर्म बेकार है, क्षत्रिय का कर्म बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ही कह रहे हैं कि चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मुझे प्रसन्न करना चाहता है यानी भगवान को प्रसन्न अगर करना चाहता है तो उसे जो है ना अपने ही कर्म का पालन करना चाहिए। श्रेयां धर्मो विगुणा, चाहे अपने कर्म में कोई भी अपने धर्म में चाहे कोई भी गुण ना हो, है कि नहीं। तो शूद्र का है वैश्य का है, यहां पर क्षत्रिय का, क्षत्रिय का जो कर्म है अर्जुन को लग रहा है कि इस कर्म में तो बहुत से दोष है, अपने संबंधियों से हत्या करनी पड़ेगी, है ना। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म कर रहा है। भगवान तो कहते हैं वो अपना कर्म कर रहा है तो मैं प्रसन्न, वो मुझे प्रसन्न कर रहा है, भगवान ही देखते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म नहीं होता, अपने अपने कर्म में लगा हुआ संसिद्धि लभते परम सिद्धि प्राप्त करता है ना। तो हम ब्राह्मण के कर्मों में थे तो तपस्या तक हम आए, तपस्या। फिर है शौचम, शौचम का मतलब पवित्रता, अंदर की भी और बाहर की भी पवित्रता होनी चाहिए। और शांति, शांति का मतलब सहिष्णुता, जो ब्राह्मण है वो बहुत सहिष्णु होता है। तो सहिष्णु का मतलब ये भी है कि वो कई प्रकार की कठिनाइयों को सहन करता है। जैसे प्रभुपाद जब गौड़ीय मठ में थे तो कई प्रकार के विरोधों के बावजूद भी अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहते थे। भारत से पानी के जहाज में जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे तो उन्हें दिल के दो दौरे पड़े, उन्हें भी प्रभुपाद ने सहन किया। सहन करता है कई प्रकार की जो असुविधाएं हैं उनको सहन करता है जो उसके शरीर में होती हैं। और आर्जवम, आर्जवम को मतलब क्या है, सत्यनिष्ठा। आर्जवम मतलब सरलता भी होता है, ब्राह्मण के अंदर सरलता का एक गुण होता है, तो वो अपनी सरलता से भगवान को प्रसन्न कर सकता है ना। तो क्षत्रियों को जो है कई बार राजनीति में जो है ना झूठ बोलने पड़ते हैं और काम निकालना पड़ता है कई प्रकार से, लेकिन ब्राह्मण का जो है क्या है, सरलता। वो अपनी सरलता के गुण से भगवान को प्रसन्न करता है। आर्जवम ये विचार ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम, इसके बाद क्या है, ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। तो ज्ञान का मतलब क्या है, ब्राह्मण के अंदर ये स्वाभाविक गुण है कि कोई भी शास्त्र है कोई भी ग्रंथ है उसका वो अध्ययन करता है, उनको पढ़ता है, इसको ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान का मतलब है अनुभूत ज्ञान। जब ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, अनुभूति हो जाती है और अपने अंदर वो इतने अनुभव बढ़ जाते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर जो है वो विद्या अनुभव के द्वारा देता है, अपने अनुभव से देता है। तो ये जो है ब्राह्मण का गुण है, ज्ञानम और विज्ञानम। विज्ञानम का मतलब यही अनुभूत ज्ञान। और फिर आस्तिक्यम, आस्तिक्यम का मतलब क्या है,
धार्मिकता। जो ब्राह्मण है वह धर्म के सिद्धांतों पर सदा विचार करता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, इस प्रकार ब्राह्मण भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए इन बातों पर विचार करता रहता है।
भगवान के आदेश को स्वीकार करना आस्तिक मतलब है ना। तो इस तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब के गुणों की चर्चा हुई। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं, तो इनका प्रश्न है, तो इनका प्रश्न है कि कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में तो सभी शूद्र हैं, तो फिर ये हमने कैसे बताया कि किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण है या किसी के अंदर क्षत्रिय गुण है, वैश्य गुण है, शूद्र गुण है, इसको कैसे बताया जाए। कलयुग में शूद्र है इस कारण से क्योंकि गर्भाधान संस्कार नहीं होता लोगों का, क्योंकि गर्भाधान संस्कार नहीं होता है इसलिए कलयुग में सभी शूद्र हैं। लेकिन फिर जो उनके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो उनके जो स्वाभाविक गुण हैं जो उनके अंदर हैं वो दबे हुए हैं। यद्यपि कलयुग में हर व्यक्ति का जन्म शूद्र के समान होता है ना, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है ना क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र जो चार वर्ण है उनमें कोई ना कोई प्रवृत्ति होती है उनके प्रति ना? अब वो प्रवृत्ति जो ना उस समय नहीं प्रकट होती है जिस समय आपके सामने
भोजन की समस्या हो कि कैसे भोजन प्राप्त करें, तो भोजन की व्यवस्था में ही आपका पूरा समय लगता हो तो फिर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो गुण है वे प्रकट नहीं कर सकते। किंतु कलयुग के पहले युगों में राजा क्या होते थे? राजर्षि। राजर्षियों की छत्र छाया में चारों वर्णों के लोगों के जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती थी, तो लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते थे,
ये सब कार्य करते थे। और राजा का जो है ये कर्तव्य था कि वो देखे कि सब जो प्रजा है उसकी आवश्यकताएं जो मूल आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही है ना, ये राजा का कर्तव्य है। हाँ, तभी वे अपना अपना कर्म कर सकते थे क्योंकि उनको जीवन निर्वाह की कोई चिंता नहीं होती थी। राजा का मतलब यह है रंजयत इति राजा, राजा का मतलब है जो प्रजा का रंजन करे उसे राजा कहते हैं। तो प्रजा अगर सब तरह से खुश है तो फिर जो है वो अपने अपने कर्मों का जो है ना पालन करते हैं। और कोई प्रश्न? हाँ, तो इनका प्रश्न है कि जब भगवान तो कह रहे हैं कि जो कर्म जिसका है उसको करने से जो है ना वो सिद्धि प्राप्त करता है ना, लेकिन फिर अगर ब्राह्मण लोग जो है ना ऐसा कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ ये शूद्र क्यों है और फिर नफरत करते हैं, नफरत की भावना करते हैं, तो उनका फिर क्या होता है? अगर वो नफरत की भावना करते हैं तो वो भगवान से नफरत कर रहे हैं, है ना। तान हम दुष्ट क्रूराम संसारे सुनराधमान सिपाम असुमान आश्रय, तो भगवान ही कहते हैं कि उनको आश्रय योनि में मैं गिराता हूं जो द्वेष करते हैं। माम आत्म पर देह प्रद्युषण विश्व का, तो मैं जो है दूसरों के देह में आत्मा के रूप में हूँ।
जैसे भगवान रामचंद्र की सेवा में बड़े बड़े बंदर कार्य कर रहे थे, वे क्या कर रहे थे? बड़े बड़े वृक्ष और पत्थर लाला कर समुद्र पर पुल बना रहे थे। उनमें एक गिलहरी भी थी, वो अपने छोटे से शरीर से कुछ धूल लाकर उस पुल पर झाड़ रही थी। तो हनुमान जी ने जब उसे देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, तू यहाँ क्या कर रही है? किसी के पैरों के नीचे दबकर मर जाएगी, चल भाग यहाँ से। तो भगवान राम ने हनुमान जी को डांटा, नहीं, जिस प्रकार तुम अपनी पूरी शक्ति मेरी सेवा में लगा रहे हो उसी प्रकार ये गिलहरी भी अपनी पूरी शक्ति मेरी सेवा में लगा रही है। तो इसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि भगवान शूद्र से भी उतने प्रसन्न होते हैं जितना कि ब्राह्मण से, यदि वे अपने अपने कर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न करें।
तो बड़ी बारीक है कि कोई व्यक्ति जो है किस भावना से कर्म करा है, सात्विक राजस तामस है कि नहीं। तो कोई ब्राह्मण भी है मान लो वो यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है ना, लेकिन वो दूसरों के विनाश के लिए कर रहा है ना, तो वो फिर तमोगुणी हो गया है कि नहीं। यदि वे ब्राह्मण है वो यज्ञ कर रहा है, पठन पाठन यजन याजन ये सब कर रहा है, ब्राह्मण है ना, लेकिन वो जो है यज्ञ भी कर रहा है तो दूसरों का नुकसान करने के लिए कर रहा है कि नहीं, तो वो जो है तमोगुणी हो जाता है। या वो यज्ञ कर रहा है लेकिन कुछ उसमें अपना फायदा निकालना चाहता है, मुझे इसमें कितना फायदा हो कितना लेना, तो रजोगुणी हो जाता है यज्ञ। तो इस तरह से ब्राह्मण का कर्म भी जो ना खराब हो सकता है, तमोगुण हो सकता है कि नहीं, और शूद्र का कर्म जो है ना अच्छा हो सकता है, सत्वगुण हो सकता है, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है कि नहीं। तो कथा है ना मोची की, ब्राह्मण और मोची की है कि नहीं। तो एक ब्राह्मण है वो तपस्या में लगा हुआ है कि नहीं, लेकिन तो भी उसके अंदर जो है वो भावना नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने की भावना नहीं है। इसलिए भगवान ने उसको ऐसी बुद्धि नहीं दी कि वो कुछ भी भगवान को समझ पाए। जब नारद जी ने कहा कि भगवान जो है हाथी के छेद में सुई नहीं, हाँ नारद जी ने कहा कि भगवान जो है सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे हैं, है? तो उसने बिल्कुल जो ना मना कर दिया कि बिल्कुल हो नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है ना। इधर भी ब्राह्मण है, तपस्या कर रहा है ना, लेकिन उसकी जो तपस्या है वो रजोगुण के अगर स्तर में है, रजोगुण के भाव में है, तो वो जो ना भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। और जो मोची था वो सत्वगुण में कार्य कर रहा है, इधर भी जूते बनाता है, जूते सिलता है, लेकिन वो जो ना भगवान का स्मरण करते हुए वो जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है। तो उसको भगवान ने बुद्धि दे दी कि वो समझ पाया है? और जब नारद जी ने उसको बताया कि भगवान जो है सूर्य के छेद से हाथी को निकाल रहे हैं, तो प्रसन्न होकर के और नाचने लगा कि देखो हमारे भगवान तो हर कार्य अद्भुत करते हैं। तो नारद जी कहते हैं अरे अरे नहीं, तुमने स्वीकार कर लिया जो मैंने बताया है? तो नारद जी, तो मोची कहता है कि नारद जी इस बात को समझने में क्या दिक्कत है, इस बात को समझने में क्या दिक्कत है, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं तो ये बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है और बीज सबसे छोटा होता है, एक फल में कितने बीज होते हैं, है कि नहीं? तो इतने छोटे से बीज में भी भगवान ने जब इतना बड़ा पेड़ गाड़ा हुआ है, तो फिर हाथी सुई के छेद से हाथी को निकालने में क्या दिक्कत है भगवान की, है कि नहीं? तो इस तरह से कोई व्यक्ति जो है ना अपने कर्म में लगा हुआ सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और सिद्धि का मतलब यही है कि फिर भगवान के बारे में और जानने का प्रयास करना, है कि नहीं? पराभवस्तावत अबोध जातो यावन जिज्ञासा आत्मतत्त्वम्। तो जब तक आत्मतत्व की जिज्ञासा नहीं करता है तब तक जीवन में पराभव होते रहते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है ना ये सब जो है ना जब अपने अपने कर्म से शुद्ध हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान से और जानने का प्रयास करते हैं, भगवान के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है ना लक्ष्य है, कृष्ण कथा ये लक्ष्य है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि ब्राह्मण है वो शांति प्रिय होते हैं, तो इसके विपरीत जो गुण है वो किस कैटेगरी में आएंगे, है ना? नहीं, यहाँ पर बताया गया ब्राह्मण का मतलब जो गुण है शांति प्रियता सम, मतलब मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं तो उनको जो है वो बस में करता है, मतलब ज्यादा अपने काम को फैलाना नहीं चाहता है ना। सम का मतलब यही है, जैसे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं तो अपना सरल मतलब अपना एक कुटिया बना ली और अपना भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो नहीं सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए फिर उसके बाद ये चाहिए फिर वो चाहिए, ये नहीं है उनके अंदर। जैसे लोमस मुनि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कुटिया ही नहीं बनाई है कि नहीं, और जब चल रहे थे वो लोमस मुनि तो उनके सिर में छाता भी नहीं है, कोई मकान भी नहीं है और पानी बरस रहा था, तो अपने सिर के ऊपर कुछ रखे हुए थे वो, कुछ चीज रखे हुए थे अपने सिर के ऊपर और चले जा रहे थे। तो किसी ने कहा कि आपके लिए अच्छा एक मकान बनवा दें, आप तो तकलीफ पा रहे हैं, बरसात है, पानी बरस रहा है। लोमस मुनि के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जब एक जीवन बीतता है तो अपनी छाती का उनके एक बाल कम हो जाता है, छाती का एक बाल कम हो जाता है, और उनकी छाती में तो बहुत से बाल हैं, तो इतनी बड़ी आयु है लोमस मुनि की। और वो कहते हैं कि इतनी छोटी आयु में क्या घर बनाने की जरूरत तो ब्राह्मण का ही गुण है कि वो जो है मतलब ज्यादा अपने साज सामान इकट्ठे नहीं करना चाहता है कि मुझे ये चाहिए फिर वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ असुविधाएं भी होती हैं तो उन असुविधाओं में भी जो है ना वो रह करके अपने जो ना हाँ अपने कार्य में लगा रहता है ना। लेकिन छत्री में क्या होता है, छत्री में होता है कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। कहे सहस्त्र बाहु अर्जुन थे, तो जब आए वो जमदग्नि के आश्रम में, है ना, तो जो गाय थी जमदग्नि की, जो गाय थी, तो उस गाय से उन्होंने सहस्त्र बाहु अर्जुन का और उनकी पूरी सेना का सत्कार किया, आदित्य किया, उनके लिए महल भी तैयार कर दिए और सैया तैयार कर दी, दास दासी तैयार कर दिए और सैकड़ों प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए, सब उस गाय के द्वारा वो भोजन करा दिया और सुला दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब सहस्त्रबाहु अर्जुन सोचने लगा कि भाई ये गाय तो राजा के पास होना चाहिए, क्योंकि राजा को जो है ना इन सब चीजों की आवश्यकता होती है, वो जो है ना इन चीजों का भोग करे, है ना। तो उन्होंने गाय लेना चाहा और जमदग्नि मुनि को जो ना इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो इन चीजों का कभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे गाय से, कि उनको मतलब ये चीजें उन्होंने उसको रखा था केवल यज्ञ की जो आवश्यकता है वो पूरी करेगी गाय, वो यज्ञ में अपने लगे रहती है ना। तो ये अंतर है। ब्राह्मण सोचता है, ब्राह्मण को बहुत प्रकार की सुविधाएं और सुख देने की जो ना अवसर दिए जाते हैं, लेकिन वो उन सुख सुविधाओं का जो है ज्यादा लाभ नहीं उठाता है, वो सोचता है कम से कम जो है ना। और वो अपना उलझना नहीं चाहता उन सब चीजों में, क्योंकि अगर वो इतनी चीजें रखेगा, इतना इतना काम बढ़ाएगा, तो फिर उनका उसका जो दिमाग है वो इन सब चीजों में फिर फंसेगा। तो अपने को फंसाना नहीं चाहता बहुत से कार्यों में जो ब्राह्मण है ना। तो सम का मतलब यही है, जो ब्राह्मण है वो क्षत्रियों को जो है दिशा निर्देश करता है। तो क्षत्रियों के अंदर ये इच्छा होती है कि अपने राज्य को खूब बढ़ाओ, है ना, अपना ये बढ़ाओ, अपना वो बढ़ाओ। तो अभी उसके दिमाग में आता है अपना यश बढ़ाना है, तो अपने यश को बढ़ाने के लिए फिर बहुत से कामों में लग जाता है राजा। अपना राज्य बढ़ाना है, अपनी कीर्ति बढ़ानी है, तो इन चीजों में लग जाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है वो उनका दिशा निर्देश करता है, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये मत करो। इस तरह से जो है ना ब्राह्मण क्षत्रिय में अंतर है। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गोणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राधा पाठ सखे जय हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे